ओम शांति। आप सभी का ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू और नीचे भी हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसी के सभी स्टाफ की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी महानुभाव यहां पधारे हैं और आप तो भारतीय माइथोलॉजी जो भी शास्त्र हैं उसके अच्छी तरह से ज्ञाता हैं। आप समझते हैं कि एक समय ये भारत था जब हम सभी स्वस्थ रहते थे। इवन मैं तो देखता हूं अपने 50 साल पहले भी ऐसा समय था जब ऐसे लोग होते थे 90 साल की उम्र तक उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। ब्लड प्रेशर डायबिटीज तो बहुत दूर की बात है, उनको कभी बुखार भी नहीं आया था। तो उसमें मेरे परिवार के ही मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड पैटर्न मतलब मदर की तरफ से मेरे नाना जी, मैं उनकी हेल्थ देखता था कितनी अच्छी हेल्थ है उनकी। 95 की एज में भी उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। तो अब हम पिछले 25-30 साल से देख रहे बीमारियों का बहुत तेजी से दौर शुरू हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम, ये तो हम जानते हैं योग से हम निरोगी बनते हैं। एक सच्चा योगी निरोगी होता है और भोगी रोगी होता है। ये जो विषय विकार हैं ये हमें रोगी बनाते हैं। इस पर पिछले मैं लगभग 30 साल से इस एरिया में रिसर्च कर रहा हूं और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट और DRDO डॉक्टर कलाम के साथ कार्य करते हुए मैंने ये पिछले 25-30 साल में पाया है और रिसर्च की है कि हम सचमुच में राजयोगा मेडिटेशन लाइफस्टाइल, हमारा अगर जीवन ही योगी बन जाए, पवित्र योगी जीवन हो हमारा, तो उसके द्वारा कैसे हम अपने मन और तन के सभी रोगों पर विजय पा सकते हैं, वो एक साइंटिफिक स्टडी हमने की और उसका मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, शेयर करूंगा और फिर बाद में आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको भी लेंगे। चलिए हम आपको, मैं कुछ स्लाइड्स के द्वारा आपको क्लियर करूंगा और आप नोट भी कर लेंगे, जहां आपको कोई क्वेश्चन महसूस हो तो आप पूछ सकेंगे। आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ ही डिम लग रहा है, देखो ना, कुछ थोड़ा प्रॉपर फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। ये लाइट ना यहां पर, ये हाँ जी, हाँ ये फोकस बंद करें, हाँ राइट, लेट्स गो। देख पा रहे हैं अभी आप? राजयोग से मन एवं शरीर के सभी रोगों पर विजय। और थोड़ा सा फोकस कम है, थोड़ा ना फोकस थोड़ा सा और, हाँ जी, ये लाइट बेशक बंद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये ट्यूबलाइट बंद कर सकते हैं कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आपके सभी के ये इंटरेस्ट की बात है क्योंकि हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सदा खुश भी रहना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे हमारे जीवन बन जाए कि हम सदा स्वस्थ भी रहें और सदा खुश भी रहें। तो ये प्रोग्राम हमने शुरू डेवलप किया, 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। ये हमारा माउंट आबू का ग्लोबल हॉस्पिटल है जहां मैं पहले कार्य कर रहा था, अभी भी बीच बीच में आता हूं। और ये हमारा नीचे ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है। ये स्लाइड्स अभी मतलब फिर भी बहुत ही इतनी डिम कभी होती नहीं है, सुनो, इतनी डिम कभी होती नहीं है, नॉर्मली बहुत ही ब्राइट रहती है लाइट। चलिए हम क्यों बात कर रहे हैं 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर की, क्यों बात कर रहे हैं? आज की जो हेल्थ केयर है, मॉडर्न हेल्थ केयर, सिर्फ बॉडी की केयर करते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं भारत में और विदेशों में भी, US, UK, इंग्लैंड, कोई भी देश अगर ले लें आप, वहां सिर्फ बॉडी की केयर की जाती है, शरीर का ही इलाज सिखाया जाता है। चाहे हम MBBS करें, MD करें, DM करें, MCH करें, FRCP करें, FRCS करें, कोई भी हम पैथी में चले जाएं, सिर्फ हमको बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं भारत में और विदेशों में, उसमें सब में बॉडी की ट्रेनिंग होती है। और जबकि हम जानते हैं आज लगभग सभी बीमारियां, इवन कोविड जब आया, कोविड का पैंडेमिक आया, आप सबने देखा कितना भयानक था, उसमें भी माइंड का रोल था। जिनका मन स्ट्रांग था, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, रोग प्रतिरोधक शक्ति स्ट्रांग थी, वो 80-90 साल की उम्र में भी ठीक हो गए। जबकि उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर की जैसी बीमारी भी थी, वो कोविड से बाहर आ गए। और कुछ ऐसे लोग, यंग लोग, उसमें से काफी सारे डॉक्टर्स भी जो 30 साल 35 साल के थे, उनकी डेथ हो गई। आप सबने सुना होगा, मीडिया में काफी ये खबर आई, क्योंकि जितनी भी बीमारियां उनका पीछे कारण मन है और स्पिरिचुअलिटी, जो आत्मिक शक्ति है हमारी, वो उसके पीछे है। अगर हम WHO की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, उन्होंने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी 1948 में, वो कहा था कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें हम कंप्लीट, मतलब टोटल तौर पे, हम शारीरिक तौर पे, जैसे एक मैं जिस पे बैठा हूं, इसकी चार पिलर्स है ना, चार टांग है इस कुर्सी की, ऐसे हमारे स्वास्थ्य के भी चार पिलर्स हैं। पहला है हमारा शरीर, तो हमें शरीर के तौर पर भी स्वस्थ होना चाहिए, हमें मन के तौर पर भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन भी सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना संपन्न हो। चलिए 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल चलेगा, 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये 3 मिनट सब मेडिटेशन करिए, बजेगा ट्रैफिक कंट्रोल, बजेगा। चलिए 3 मिनट सभी परमात्मा की याद में बैठे। ओम शांति। तो स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें हम संपूर्ण रूप में शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से स्वस्थ हैं। चारों ही तरह से हमें स्वस्थ होना आवश्यक है। खाली बीमारी का ना होना, इसे हम स्वास्थ्य नहीं कहते, क्योंकि माता पिता से जो बीमारी के जीन्स होते हैं वो जन्म से हमारे अंदर होते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, वो हमारे अंदर कीटाणु बहुत लंबा समय तक अंदर उगते रहते हैं। कैंसर काफी समय से हमारे अंदर चलता रहता है, जब बहुत बढ़ जाता तो ऊपर आता है। हार्ट की आर्टरीज भी हमारी 5-6 साल की उम्र से ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। जिस दिन वो क्रैक होके क्लॉट बनता है, 100% आर्टरी ब्लॉक होता है, हमें हार्ट अटैक आता है। हमें पता ही नहीं होता किस समय में हार्ट अटैक आएगा। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, हमें पता नहीं होता, अचानक से कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें पता लगता है। डायबिटीज भी अंदर जीन्स होते हैं, बीमारी कब होगी पता नहीं। घुटने दिन पे दिन खराब हो रहे हैं, कमर खराब हो रही, किस दिन कुछ मेजर इवेंट होगा तो प्रॉब्लम पता लगेगी। तो कोई भी बीमारी हमें कब पता लगती है, जब हमें बीमारी ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। और तो चारों प्रकार का स्वास्थ्य हमारे, तब हम स्वस्थ हैं। और इसी WHO ने एक प्लान किया था 1977 में, एक कंट्री है कजाकिस्तान, उसमें एक सिटी है अल्माटा, वहां 200 देशों के हेल्थ सेक्रेटरीज और हेल्थ मिनिस्टर इकट्ठे हुए थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि 2000 तक सबको हेल्दी बनाएंगे। 2000 तो पूरा हो गया, पूरा हुआ नहीं हुआ भाई? 2000 पूरा हुआ, सभी हेल्दी बन गए, सभी स्वस्थ बने। जब देखा 2000 में नहीं बन पाए तो कहा 2020 तक सबको स्वस्थ बनाएंगे। तो 2020 में सब स्वस्थ हो गए। 2020 में तो कोविड आ गया नहीं, जिसने सारे विश्व को क्या कर दिया, ऐसा सीन दिखाया जो किसी ने देखा नहीं था, कभी देखा नहीं था। ऐसी महामारी, ऐसी किसी ने कभी सोची नहीं थी, ऐसा भयावह दृश्य दिखाया। और 2 साल तो काफी, 2 साल तो जोर से दिखाया कैसा भयावह दृश्य था। तो मतलब अगर क्या हम स्वस्थ, जो आज की जो अप्रोच है, क्या उससे हम स्वस्थ हो सकते हैं? अगर हम देखें, एक सर्वे देखें, ये 2015 का सर्वे है, ये जैसे चार हमारी मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, मद्रास जिसे कहते हैं, ये अगर चार शहरों में जो 20 साल से बड़े लोग हैं उनका सर्वे किया गया, भाई बहनों का सर्वे किया गया, उनके फॉर्म्स भराए गए, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, इंसुलिन, उनकी ECG वगैरह करके देखा गया और कुछ बातें पूछी गई फॉर्म भरवा करके, तो देखने में आया 100 में से तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है। प्लीज अपना मोबाइल साइलेंट मोड में डाल लीजिए, मोबाइल अपना साइलेंट मोड में डाल लीजिए प्लीज, है ना। सिर्फ 45 मिनट के लिए साइलेंस में बैठी है ना, आप सबके काम की बात है, आपको बहुत अच्छी लगेगी जब समझेंगे तो, ठीक है। लगभग हर 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर था, 100 में से लगभग 15% लोगों को हार्ट की बीमारी थी, 100 में से 10% 10वें आदमी को डायबिटीज थी, 100 में से 40% लोग मोटे थे या ओवरवेट थे, 100 में से 10 लोगों को सांस की बीमारी थी, हर तीसरे आदमी को एसिडिटी की बीमारी थी, एसिड ऊपर चढ़ना, एसिड का धुआं ऊपर चढ़ना, 100 में से 20 लोगों को हड्डियों की तकलीफ थी, और जो बहने माताएं 50 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज जब हो जाता है तो उनमें से 50% लोग, हमारी बहने माताओं को हड्डियों की तकलीफ, घुटने खराब हो जाते हैं, कमर खराब, गर्दन की हड्डी खराब हो जाती, बोन सॉफ्ट हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम्स, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, खारिश होना 10% लोगों को, आंख और नाक कान गले की तकलीफ 10% लोगों को, कैंसर लगभग 5% लोगों को, सारे कैंसर मिला करके, और सिर में दर्द, कई तरह की हेडेक होती है, माइग्रेन होता है, क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक, बहुत सारी तरह की हेडेक होती है 10% लोगों को, कोई ना कोई इन्फेक्शन, गले का, पेट का, यूरिन में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन 10% लोगों को, और कोई ना कोई हार्मोन की बीमारी, जैसे गले की थायराइड में बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी होती है, ये 5% लोगों को। अगर ये थोड़ी सी बीमारियां लिखी है, हम तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, 5,000 पेज के वॉल्यूम होते हैं जो पढ़ते हैं हम, MBBS में, MD में और आगे पढ़ते हैं, DM करते हैं, तो लगभग इसको देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। अगर आप भी यहां बैठे हैं सभी, अगर आप अपने अंदर देखेंगे आपको भी 2-2 बीमारी तो सबको मिल जाएंगे अपने अंदर, ठीक है, सबके पास है 2-2 बीमारी ना, आप कई कई लोगों को तो 5-5, 5-5, 6-6 मिल जाएंगे, 7-7, 8-8 भी मिल जाएंगे। जब मैं लोगों को देख, लोग मुझे दिखाने के लिए आते हैं, उनका कई बार तो आधा पेज उनकी बीमारी के नाम से भर जाता है, 10-10 बीमारियां भी होती हैं। तो बीमारियां आज कोई भी धरती पर, मैं समझता हूं शायद ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीमार ना हो, हर आदमी को कोई ना कोई रोग है, शरीर का भी। ऐसे समय पर हम पहुंचे हैं जहां पे हर व्यक्ति रोगी है, ऐसा समय आ गया। और अगर मन की बात करें तो मन के भी देखो 6 रोग सबको हैं। आज का इंसान, हर इंसान जल्दी में है, प्रेशर में है, इसे टाइप ए बिहेवियर कहते हैं, टाइम का प्रेशर, हर आदमी टाइम का प्रेशर में है, काम का प्रेशर, अपने मेरे हिसाब से काम होना चाहिए इसका प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, कंपैरिजन का प्रेशर, ईर्ष्या द्वेष का प्रेशर, है ना। आज आदमी को नेचुरल हमारे अंदर घड़ी है, यहां पर एक हाइपोथैलेमस, हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, और उसमें घड़ी लगी है हमारी, वो घड़ी हमारी अंदर की घड़ी है, उसमें सोने का टाइम है। कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रात को 10 बजे सो जाओ, 9:30 बजे सो जाओ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और उसमें मेडिटेशन करने का समय है। अगर उस समय हम योग करें, मेडिटेशन करें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम वो चीज अचीव कर सकते हैं जिससे कि हमारे सारे हार्मोन्स होते हैं ना, जो हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, या नींद की ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड है, गले में थायराइड ग्लैंड है, जिससे हमारी एनर्जी डिसाइड होती है, हम कितना कितनी ऊर्जा से काम कर सकते हैं, कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है, वो हमारी कितनी हमारी हड्डियां शक्तिशाली होंगी, हड्डियों में कितना कैल्शियम होगा, अगर हड्डियों में कैल्शियम है तो रबड़ की होती है, जैसे रबड़ किस तरह मोड़ सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम आने के बाद सीमेंट उनमें आ जाता है तो एकदम मजबूत, स्टील की तरह मजबूत हो जाती है, तो उसमें कितना कैल्शियम जाएगा वो ये यहां पे ग्लैंड है वो डिसाइड करती है थायराइड के पीछे। पेनक्रियाज, यहां पर पेनक्रियाज होती है, और पेनक्रियाज से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन करेंसी है, रुपया है, जैसे रुपया होता है ना, आप मार्केट, आपके पास रुपया है जेब में तो मार्केट में जाएं तो आप कुछ खरीद सकते हैं, पानी के लिए पैसे लगते हैं कि, तो इसी तरह से हमने खाना खाया, ग्लूकोज हमारे खून में आ गया कि, तो हर सेल को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, किंतु ग्लूकोज तभी सेल में जाएगा जब हर सेल के पास इंसुलिन होगी, और इंसुलिन यहां बनता है तो खून के द्वारा सारे शरीर में हर कोशिका में पहुंच जाता है। हमारे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, सारे विश्व की पॉपुलेशन 8 अरब भी नहीं है, किंतु एक इंसान के शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, 80,000 बिलियन सेल्स हैं, और एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं, एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होते हैं। तो कितने होगी टोटल रिएक्शन 1 सेकंड में सारे शरीर में, 1 लाख इंटू 80,000 अरब, और इतने सारे टॉक्सिन्स बनते हैं। और ये वंडरफुल चीज है कि हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि 1 सेकंड से भी कम समय में सारे टॉक्सिन्स को साफ कर देते हैं, इतनी वंडरफुल ये बॉडी है जो हमें मिली है, उसको चलाने वाली आत्मा है ना, कि तो डेड बॉडी में नहीं होती रिएक्शंस, है ना। आत्मा निकल जाए तो कुछ भी नहीं होता है, ना तो रिएक्शन होती है ना तो टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, तो आत्मा वो सब काम कर रही है अंदर। तो ये जो है इतना वंडरफुल कार्य जो होता है, तो ये प्रेशर जो है ना हमारा जो आज जीवन है, तो इसमें जो हमारी घड़ी है अंदर की हाइपोथैलेमस यानी पिट्यूटरी पीनियल थायराइड पैराथायराइड पैनक्रियास, और यहां पर हमारे किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स जब जब हम टेंशन में आते हैं, मान लीजिए अचानक यहां पे अभी भूकंप आ जाए, धरती हिलने लगे जोर से, तो क्या होगा? इमरजेंसी में सब डर लगेगा, तो वो एक एड्रिनल ग्लैंड से यहां से एक हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन नाम का हार्मोन निकलता है, ताकि उससे उस तकलीफ से हम लड़ने का तैयार हो जाएं। उस लड़ने के लिए मतलब हमें भागना पड़े या हम आराम से बैठे रहें उसको फेस कर सके, नाक फेस कर सके, तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, हमारी आंखें ऐसे फोकस हो जाएंगी, थोड़ी सी बात होगी नजर कहीं पर जहां पर एकदम से एकाग्र हो जाएंगे, नसें सिकुड़ जाएंगी, हमारी मसल्स टाइट हो जाएंगी, तो यह हार्मोन निकलता है। और इसकी बजाय जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, और जब हमें लगातार स्ट्रेस रहती है, लगातार माना कुछ काम ऐसे हैं जैसे कि हम डॉक्टर से काम है, हमें हमेशा सारा दिन बाद सीरियस पेशेंट देखने होते हैं, अचानक से कोई इमरजेंसी, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को स्ट्रोक आ जाता है, किसी को मुंह से ब्लीडिंग हो जाती है, अचानक से ब्रेन कुछ अचानक तकलीफें हो जाती हैं, तो हम लोग हमें मतलब और कभी भी रात आधी रात भी हमको जागना होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं काम पे जैसे उनका स्ट्रेसफुल लगातार, आप में से भी बहुत कुछ ऐसे कुछ प्रोफेशन में होंगे कि जहां पर काफी स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस रहती है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस को फेस करने के हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से निकलना शुरू होता है, जितने जो भी हम सोचेंगे सुबह से उठते ही वो डिसाइड करेगा कितना कॉर्टिसोल हार्मोन 8 बजे तक निकलेगा। वो हार्मोन भी हमारे विचारों से निकलता है, अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं सकारात्मक हैं तो वो हार्मोन बैलेंस में निकलेगा, अगर वो हमारे विचार नेगेटिव हैं, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, जीवन में दूसरों के प्रति में उनकी बुराई दिखाई देती है, हम नेगेटिव सोचते हैं दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, तो हार्मोन ज्यादा निकल जाएगा। अगर वो 8 बजे तक ज्यादा हार्मोन निकल गया तो वो सारा दिन फिर आपको जल्दी चिंता गुस्सा चिड़चिड़ापन होता रहेगा, आपके अंदर बात बात में गुस्सा आएगा और आपकी एफिशिएंसी काम करने कम हो जाएगी। और अगर आप सुबह 8 बजे तक आपने चुप रह गए, साइलेंस में रह गए, शांति प्यार खुशी अच्छे अच्छे विचार आपने प्रभु चिंतन किया, आपने कुछ अच्छी बातें सुनी, जैसे हमारे यहां हम परमात्मा महावाक्य के मुरली सुनते हैं, वो 100% मन के 4 एस्पेक्ट कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं टीम इंग्लिश में, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, संकल्प भावनाएं वृत्ति और स्मृति। अगर हम 8 बजे तक पॉजिटिव टीम रखें तो हमारे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बैलेंस में निकलता है, जिससे हम सारा दिन शांति प्यार खुशी आनंद में रहते हैं, और एफिशिएंसी हमारी 10 गुना बढ़ जाती है, कार्य क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे पहले कहा जाता था, हमारे पेरेंट्स को या पुराने लोगों को पता नहीं था ये चीजें, तो अभी साइंस के द्वारा पता लगी, हमने रिसर्च की कि तो पहले पता नहीं था, हमारे माता पिता हमको सोने देते थे सुबह सुबह, रात को 10 बजे सो जाओ बेटा, सुबह सुबह 4 बजे हम नहीं चाहते थे उठना तो भी जबरदस्ती उठाते थे, है ना, और उठा करके कहते थे बेटा 8 बजे तक तो चुप रहना, है ना, बस अभी ये काम करो, नहा धो के तैयार हो जाओ, अपनी पढ़ाई कर लो, चलो फिर सभी आरती करेंगे, है ना, चलो मंदिर में चलेंगे, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा पॉजिटिव सोचना है। मोबाइल तो था नहीं, टीवी भी नहीं था उस समय, तो ये तो बाद में चीजें आई हैं। तो पहले हमारी माता जी 8 बजे तो भजन ही गाती रहती थी, है ना, सुबह से लेकर उनके भजन शुरू होते थे और चुप रहती थी, कोई इशारा कुछ कहे तो बोलती नहीं थी। तो क्यों, इसके पीछे क्या महत्व था? आप लोग भी सभी, आप तो धार्मिक विंग के हैं, आप सभी समाज में धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, धर्म का मतलब ही धारणा है। तो वो हमारे समाज में कैसे आगे आए, वो चीज हमारे समाज की मानसिक स्वास्थ्य आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे बढ़े, और उसके उससे कनेक्शन में शारीरिक स्वास्थ्य भी है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारी अंदर का सिस्टम है, और फिर हमारे मेल फीमेल ग्लैंड होती हैं, तो 7 ग्लैंड होती हैं, 7 यहां हार्मोन के ग्लैंड हैं। तो अगर यहां पर जहां आत्मा की सीट है, अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं और शांति प्यार खुशी आनंद है आपके जीवन में, अगर आप स्वयं में स्थित रहते हैं तो शांति पे, तो आपका ये सारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, जैसे कहते हैं 7 सुर होते हैं संगीत में, सारे गामा पादा निसा, तो अगर आपका यहां पे शांति प्यार खुशी है तो सारे हार्मोन्स बैलेंस में निकलते हैं, संतुलित मात्रा में निकलते हैं। अच्छा, इसी को अमृत कहा जाता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो परमात्मा को याद करके उसकी याद में स्थित होकर आनंद की स्थिति, आनंद को प्राप्त करता है, आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है, उस परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है, तो वो उसके द्वारा हार्मोन्स बैलेंस में निकल जाते हैं। और अगले 24 घंटे में अगर आपके जो भी शरीर में तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, घुटने खराब है, कमर खराब है, सिर में दर्द होता है, पेट की खराबी है, लीवर खराब हो गया, वो कम हो जाता है। अगर जो इस समय ये चीज का मिस कर देता है, सुबह का मेडिटेशन, जो इस समय सोता कहता है उसके लिए उसका भाग्य भी सो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय हम सपने देख रहे होते हैं, अगर इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं और सपने भयानक होते हैं, ड्रामने सपने होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं और भी याद रहते हैं। हार्मोन्स तो आप सो रहे हो चाहे जाग निकलेंगे जरूर, अगर आप जाग करके एफर्ट के साथ परमात्मा से जुड़ते हैं तो आनंद आएगा, अगर आप परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं तो आपको खराब खराब सपने आएंगे। तो क्या होगा, हार्मोन्स बैलेंस में निकलेंगे नहीं, और अगर हार्मोन्स बैलेंस में निकले तो क्या होगा, सारा दिन आपको कैसे बीतेगा, डरावने सपने आएंगे, तो सारा दिन वो आपका हार्मोन्स ज्यादा निकल आएंगे, तो सारा दिन जल्दी चिंता गुस्सा आता रहेगा, काम कर ही नहीं पाएंगे, समझ रहे? तो साइंस के हिसाब से ये बात, ये इसलिए कहते हैं कि हम आज सभी के सभी टाइप ए बिहेवियर वाले हुए, हम अपनी नौकरी से 8 बजे 10 बजे आते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, खाना खाने का समय है, शाम का खाना कैसे होना चाहिए, अंधेरा होने से पहले होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, है ना, 6:30 तक हमको सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, फिर तो आज खाते हैं क्या, सबका टाइम ही बदल गया, रोज 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, सोने में 1 बजे जाते हैं, जबकि सोना चाहिए 10 बजे तो सो जाना चाहिए, 10 माना बस, है ना। तो हमारी अंदर की साइकिल बता रही है, कहते ना 1 आवर स्लीप बिफोर 12, 12 बजे से 1 घंटा पहले नींद, 1 घंटे की नींद 12 बजे के बाद 2 घंटे की नींद के बराबर होती है। अगर आप 8 बजे सो जाएं, 9 बजे सो जाएं, तो 3 घंटा हुए ना, तो 6 घंटा नींद हो गई आपकी 12 बजे तक, और फिर आप 2 बजे तक 6 और 2 8 घंटा, और आदमी को 8 घंटा नींद चाहिए तो 8 घंटे की नींद हो गई, आप 2 बजे उठ के फिर अपना परमात्मा को याद करिए, 2 बजे उठ के अगर स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे हैं तो 2 बजे आधा घंटा परमात्मा को याद करके 2-3 घंटा पढ़ाई करिए, और वो 3 घंटे की पढ़ाई आपके 12 घंटा के बराबर काम करेगी, आपकी मेमोरी पावर ऐसी हो जाएगी, स्कैनिंग है ना, पेज आपका याद हो जाएगा, पूरा पेज नंबर कौन से पेज पे क्या चीज लिखी वो एकदम छप जाएगी अंदर। अब ये बच्चे क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, सारी रात पढ़ते हैं और रात को सुबह 4 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठ के अपने कॉलेज में चले जाते हैं, है ना, ये उल्टा, हम तो कॉलेज में हमेशा ये देखा। तो हमें जो ये जो आज स्वभाव है ना, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, ये एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का, सिनिकल बिहेवियर, दूसरों में दोष दर्शन, आज का इंसान दूसरों में दोष ढूंढता है, जब हम पहले लोग थे सबके अंदर गुण देखते थे, उन गुण दर्शन, देवता जो है ना, ऋषि मुनि अच्छे लोग दूसरों के गुण देखते हैं, बुरे लोग पापात्माएं दूसरों में अवगुण देखते हैं, इसलिए कलह होती है। ना पति पत्नी की बनती है, ना माँ बाप बच्चों की बनती है, ना बच्चों से माँ बाप की बनती है, हर जगह झगड़ा ही झगड़ा है। उसका कारण ये है, सिनिकल बिहेवियर है और हॉस्टाइल बिहेवियर, रिवेंजफुल बिहेवियर, किसको माफ नहीं कर पाते, आलस्य, डर। डर शब्द से बीमारी शब्द आया है, बी माना डर, मारी माना बने रहना। अगर आपके अंदर यहां डर है, चिंता है, गुस्सा है, तो सारा का सारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है। ये संगीत की बजाय लाइफ आपका क्योटिक शोर बन जाता है, हर समय बेचैनी, हर समय परेशानी जीवन में, बिना कहे डर लगता रहता है, और ये आपकी बीमारी की शुरुआत है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करना जरूरी है, हर आदमी के लिए जरूरी है। ये नहीं कि कोई हमें इसके लिए हमें कोई घरवार छोड़ने की आवश्यकता है। किसी कहीं भी रहते, प्रवृत्ति में रहते, कहीं रहते हैं, कुछ भी काम करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में, आपको हम सबको सुबह सुबह उठने की आवश्यकता है, हमको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, करो कि नहीं करो, सबको ही आवश्यक है। तो ये हमारी ईगो है ना, अटैचमेंट, ये काम विकार, लोभ, चिंता, गुस्सा। गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है। एक बार गुस्सा करते हो, तीन दिन के लिए आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं अगले 3 दिन तक। इंसोम्निया, नींद आना एक बड़ी समस्या हो गई है, डिप्रेशन, आज लोगों को उदासी, हर चौथा आदमी डिप्रेशन में। आज 10% लोग तो दवाई खा रहे हैं तो भी ठीक नहीं होते हैं। कितना सुसाइड, कितना आत्म जीव घात कितना बढ़ता जा रहा है, और नींद 10% लोग दवाई खा के सोते हैं, दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं आती। और इस समाज में तो आज देखो कितनी कंपटीशन है, कितनी ईर्ष्या द्वेष है, कितना मतलब समाज तो एकदम क्या बताएं, आप सभी समझ सकते हैं समाज कैसा है। आज का अखबार पढ़ के दिल कितना खराब हो जाता है। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो आइडेंटिटी क्राइसिस, सब लड़ रहे हैं आपस में, पति पत्नी लड़ रहे हैं, माँ बाप बच्चों से लड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, हर जगह झगड़ा है, हर जगह ईगो। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, सब बड़े हैं, सब कोई किसी को सम्मान नहीं करता है, सब सम्मान चाहते हैं पर कोई करता किसी का भी नहीं, राइट। जब भी कहा जाता जो बोते हैं वही मिलता है, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, है ना। हमारी बड़ी दादी जी का एक स्लोगन था, सम्मान, सबको सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा, राइट। तो और राइट्स, कम्युनल राइट्स, है ना, जो झगड़े होते हैं ना, जाति झगड़े और आतंकवाद सारे विश्व में, इसका सोल्यूशन क्या है? कमांडोज नहीं है, इसका सोल्यूशन है कि बचपन से, छोटी उम्र से, 4-5 साल की उम्र से, नर्सरी क्लास से ही बच्चों को सिखाया जाए कि हम जो पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, इसके लिए हमें ए फॉर आत्मा सिखाएं, है ना, और बी फॉर परमात्मा सिखाएं, या बी फॉर बाप सिखाएं, है ना। बाप माना एक शरीर का बाप और एक परमात्मा, हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा, और सी फॉर कनेक्शन, संबंध सिखाएं, और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में कर्म का क्या महत्व है, वो हम बचपन से जाने तो तब हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। और जैसे देखा हमने, स्वस्थ भी कोई है नहीं, ना मानसिक तौर पे स्वस्थ है, ना शारीरिक तौर पे स्वस्थ है, ना सामाजिक तौर पे स्वस्थ है, ना आध्यात्मिक तौर पे स्वस्थ है। ऐसे ही अगर खुशी की बात देखें, आज खुश भी कोई नहीं है, हंसने को खुशी नहीं कहते हैं। खुशी क्या चीज है? हैप्पीनेस, ये एक खुशी की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है। इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट। ये अंदर से आती है, अंदर की बात है, अंदर से आती है। कब आती है? जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं। कहते संतोष सबसे बड़ा धन, कहते हैं ना, तो अंदर की चीज है। और इज एनीवन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? क्या विश्व में कोई व्यक्ति खुश है? क्या सारे विश्व में कोई व्यक्ति खुश है? बताइए, ये पावर में जो व्यक्ति है वह क्या खुश है? कोई व्यक्ति भी खुश नहीं है, चाहे कितना बड़े पैसे वाला हो, कितनी बड़ी उसने डिग्री की प्राप्त की हो, कितने बड़े ही कुछ भी किया हो, कितना सबसे सुंदर व्यक्ति हो, मिस यूनिवर्स हो, मिस्टर इंडिया हो, मिस्टर यूनिवर्स हो, वो भी खुश नहीं है। कितने मेडल मिल गए हैं उसको, तो वो भी खुश क्यों नहीं है? क्योंकि खुशी कहां से आती है?
खुशी तब आती है जब मन और बुद्धि स्वस्थ, मन और बुद्धि प्योर हो, पवित्र हो। खुशी कब आती है? जब आपके अंदर शांति हो। खुशी कब आती है? जब आप अंदर सत्यता आपके जीवन में हो। खुशी कब आती है? जब आप निर्भय हो। खुशी कब आती है? जब आपके अंदर सहनशीलता हो। आज का आदमी गुब्बारे की तरह से है, गुब्बारे में हवा भरते जाओ फूलता जाता है ना, और जब कोई सुई लगा दे उसमें, एक निडल लगा दे तो क्या होता है, एक सुई कोई भी आदमी लेके आए तो एकदम पिचक के छोटा सा हो जाता है। आज का इंसान भी ऐसे है, उसको सफलता मिलती जा रही है, फूल के कुप्पा होता जाता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और थोड़ा सा उसको समाज में क्रिटिसिज्म मिले, लोग उसकी गिलानी करें, निंदा करें, कोई दुख आ जाए, तो आज का आदमी कैसा हो जाता है, चेहरा सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है, उसके जैसे दुखी कोई नहीं है। तो अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको सहनशीलता चाहिए। सहन करके भी हम, सहन शक्ति तो बहुत लोगों के पास है, सहन तो हम बहुत कर लेते हैं, कि तो सहन करके समाना नहीं आता लोगों को। और सहन, खाली सहन करने से तो हमें माइग्रेन होता है, खाली सहन करने से तो हार्ट की बीमारी होती है, खाली सहन करने से हड्डियां खराब हो जाती है, रीढ़ की हड्डी खराब, घुटने खराब हो जाते हैं, खाली सहन करने से कैंसर हो जाता है, खाली सहन करने से तो हमारी आंतें खराब हो जाती हैं। सहन करके समा लेना, सहन करके भी शील रहना, मतलब ठंडे रहना, तो वो हमें आवश्यक है। इसके बगैर कोई आदमी सदा खुश नहीं रह सकता। इसी तरह इजी सरल स्वभाव वाला व्यक्ति खुश रह सकता है। स्वीटनेस, जो मधुरता, जिसके जीवन में मधुरता है, आंखों से भी मधुरता, बोल में मधुरता, सुनने में मधुरता, उसके देखने में मधुरता, मिठास है, ऐसा आदमी सदा खुश रह सकता है। जिसके अंदर जो बड़ी, इसकी दिल बड़ी है, ये दिल बड़ी नहीं, ये दिल बड़ी हो जाए सांस ही नहीं आएगा, है ना, कौन सी दिल बड़ी, अंदर की दिल बड़ी। दूसरों की गलतियों को संभाल लेना, जैसे सागर में पत्थर मारो तो पत्थर को संभाल लेती है, तो इसको संभाल लेना। और एम्पैथी, रहम, सच्चा प्यार, त्याग और संतुष्टता, ये जीवन में ये वैल्यूज आवश्यक है। आज 95% बीमारियां कैसे पैदा हुई है, तनाव से उत्पन्न होती है। कोविड, इवन इन्फेक्शन, जुकाम होना भी है ना, कोविड आया, कोई बीमारी भी होना, इसके पीछे भी हमारी, हमारा क्या है, मन है ना, ये प्रूव हो चुका है कि हर बीमारी, एक्सीडेंट भी क्यों होते हैं, उसके पीछे भी क्या है, कौन है, मन है। हमारा, हमारे मन में टेंशन होती है तभी तो एक्सीडेंट होते हैं। अगर सही ढंग से गाड़ी चलाएं, शराब भी लोग क्यों पीते हैं, सिगरेट बीड़ी भी क्यों पीते हैं, उसके पीछे भी तनाव है, मन है। तो ये देखिए, ये जो है इस प्रोग्राम के बारे में, ये जो जैसे एक, ये तो आप सभी जानते हैं, मैं समझता हूँ, फिर भी बता देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि आज का इंसान, हम जितने भी, मैंने बताया पहली स्लाइड में कि हम इलाज किसका कर रहे हैं, बॉडी का इलाज कर रहे हैं। और बॉडी हम कब बनते हैं, बॉडी हम कब कहलाते हैं, एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसको बचाने की डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, बचा नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर बाहर आता है, पेशेंट के रिश्तेदार बाहर खड़े होते हैं, क्या कहता है डॉक्टर उनको, आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन और शी हैज गॉन, हमने, मुझे अफसोस है, हमने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, जो आपका था वो चला गया, क्या ले जाओ, बॉडी ले जाओ, यही तो बोलते हैं ना। अभी एक घंटे पहले क्या आया था, एक घंटा पहले क्या आया था, पेशेंट, अभी क्या जा रहा है, बॉडी। अब इस आदमी के अंदर शरीर में सारे ऑर्गन हैं, दिमाग भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, पेट में आते भी हैं, लीवर भी है, किडनी भी है, सब कुछ है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, कितना भी दवाइयां तो काम नहीं करती हैं। किंतु इसी आदमी की, अगर हम, एक आदमी और हॉस्पिटल में है, उसका हार्ट खराब हो गया, उसकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई है, हार्ट की पंपिंग 10-15% रह गई, सांस नहीं आ रहा है उसको, अगर उसको हार्ट नया नहीं ट्रांसप्लांट लगाया तो मर जाएगा, है यंग लड़का, 35 साल का ही है, 30-35 साल का ही है, अगर उसको हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया तो मर जाएगा, राइट। तो अगर देखिए, अगर इसका, इसकी, इसकी टिश्यू, इसका ब्लड और इसकी टिश्यू मैचिंग हो जाए, और दोनों का आपस में मैचिंग हो जाए, तो क्या होगा, ये हार्ट यहां से निकाल के यहां लगा दीजिए, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दीजिए कुछ समय के अंदर अंदर, ये हार्ट यहां काम नहीं कर रहा है, यहां काम करना शुरू कर देगा। क्यों काम करना शुरू कर देगा, कारण बोलिए, क्यों काम करना शुरू करेगा, इसमें क्यों नहीं काम कर रहा है, बताइए, आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, बताइए सभी, है, इसमें ड्राइवर निकल गया है ना, इसमें ड्राइवर है। इस शरीर में जो अंग फंक्शनलेस थे, जो बिल्कुल बेकार हो चुके थे, क्योंकि इसमें वो आत्मा तो है कि तो हार्ट का बीमारी से खराब हो गया है, तो ये हार्ट निकाल के हमने ये हार्ट यहां से निकाला और यहां लगा दिया और बकायदा अच्छा काम करना शुरू कर देता है, आदमी का जीवन नया हो जाता है। इसका लीवर खराब हो गया, हमने यहां से लीवर निकाला यहां लगा दिया, लीवर काम करना शुरू कर दे, किडनी निकाली किडनी लगा दी शुरू कर देती। इसका अर्थ क्या है? चलाने वाला कौन? हार्ट को चलाने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा क्यों चलाएगा? आप कहो मैं, आपके हार्ट को चलाने वाला कौन? मैं हूं कि आप हैं? आपकी आत्मा है कि मेरी आत्मा? मैं आत्मा इस हार्ट को चलाऊंगा ना, मेरे हार्ट ही आप अपने हार्ट को चलाएंगे नहीं? क्या परमात्मा क्यों चलाएगा भाई ऊपर बैठ के? हर एक के पास अलग अलग है ना ड्राइवर तो, है ना? तो हर एक वहां परमात्मा किसका क्या काम है वो आगे देखेंगे, है ना? तो आत्मा, हर आत्मा अपने आप को अपने अंगों को चलाती है, राइट? चलिए अब स्वास्थ्य किसे कहते हैं? आज ये मॉडर्न कंसेप्ट कौन सा है? स्वास्थ्य किसे, एक इंसान किसे कहते हैं? इंसान, ह्यूमन बींग इज अ कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। इंसान तीन ऊर्जाओं से बना हुआ है। एक तो आत्मिक ऊर्जा है। आत्मिक ऊर्जा कौन सी है? आत्मा के पास सात गुण है, सात एनर्जी है। पहला तो सत्य है, ट्रुथ, कि मैं कौन हूं। जो मैं हूं वो तो अजर अमर अविनाशी है। जो मैं हूं वो तो प्रकाश है, है ना? वो तो सदा ही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पहला, पर उस परम ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। ये ज्ञान, ये समझ, सत्य की समझ, ये हर आत्मा के, हर एक आत्मा के पास ये एनर्जी है, किंतु वो सुषुप्त हो गई है। और मुझ आत्मा के सर्व संबंध उसके साथ है। आत्मा सिर्फ उसको याद कर उससे चार्ज हो सकती है। इंसानों को याद करने से चार्ज हो सकती है क्या? किसी भी इंसान को याद करने से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। मेरा मोबाइल किस कुछ भी काम करूंगा तो उसकी बैटरी कम होगी ना, किंतु पावर हाउस में लगाऊंगा तो चार्ज होगा। सिर्फ पावर हाउस में लगाऊंगा तो चार्ज होगा, राइट? इसी तरह से जब हम आत्मा परमात्मा को याद करते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। अदरवाइज जितना भी मैं किसी शरीर से काम करूं या किसी से मिलूं, बातचीत करूं, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। मतलब डिस्चार्ज का मतलब क्या है? आत्मा का ज्ञान कम होता है। दूसरी एनर्जी पवित्रता है। तीसरी एनर्जी शांति है। चौथी एनर्जी सत्य प्रेम है। पांचवी एनर्जी अतींद्रिय सुख है। अतींद्रिय सुख, एक होता है खाने का सुख, देखने का सुख, बोलने का सुख, एक होता है आत्मा से परमात्मा के मिलने का सुख, अतींद्रिय सुख। एक होता आनंद, आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, गोइंग बियॉन्ड, है ना? आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाए। और फिर जो है उसके बाद आठ शक्तियां हैं। आपको शायद आज सुबह सुबह चैप्टर होगा, आत्मा का चैप्टर हुआ होगा ना सुबह, है ना? स्वयं की पहचान, है ना? तो सुना होगा शायद आपने। तो ये आत्मा के सात गुण है। इसी के आधार पर शब्द आया सतो प्रधान। सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। तो आत्मा जब सातों गुणों में भरपूर है, एनर्जी में भरपूर है, सत्व प्रधान कहते हैं। सत्युग में जो देवी देवता जो सत्व प्रधान होते हैं, इस समय आत्माएं कैसी हैं? इस समय आत्माएं कैसी हैं? तमो प्रधान, तमो माना अंधेरा, डार्कनेस, और सातों एनर्जी ना के बराबर है। तो आप कह रहे हैं डॉक्टरों कैसी सी बातें क्यों कर रहा हूं आपसे? क्योंकि ये साइंस, आजकल की साइंस भी इस बात को फोकस कर रही है, राइट? तो ये सात एनर्जी, आत्मा के पास सात स्पिरिचुअल एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी, दूसरी जो है आत्मा की एनर्जी, वो मेंटल एनर्जी, टीम, हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति, एटीट्यूड और हमारी स्मृति, हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। एक सॉफ्ट कॉपी आत्मा में होती है, हार्ड कॉपी ब्रेन में होती है। 100 अरब न्यूरॉन्स है ब्रेन में। क्योंकि मैं 30 साल से इसी एरिया में रिसर्च कर रहा हूं, हर चीज को मैंने स्टडी किया है गहराई से, तो उसी के ऊपर मैंने जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो है हमारी टीम, हमारी अगर पॉजिटिव टीम है। और तीसरी एनर्जी है फिजिकल एनर्जी, भौतिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, वो मिलती है भोजन से। कैसा भोजन मैं ग्रहण करता हूं? सात्विक भोजन ग्रहण करता हूं, रासिक भोजन या तामसिक भोजन ग्रहण करता हूं, राइट? फिर सैर, व्यायाम करना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। तो मेरा व्यायाम भी कैसा है, खुली हवा में व्यायाम करता हूं या बंद कमरे में व्यायाम करता हूं, जिम में जाता हूं या कुछ और करता हूं, तो मेरी व्यायाम भी कैसा है, वो भी सात्विक है कि नहीं, उसमें भी योग समाया हुआ कि नहीं, राइट। तो वो सात्विक व्यायाम। और फिर जो है हमारी नींद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, एक एक, एक क्या कहें, पोषण है शरीर के लिए। और दवाइयां अगर शरीर की कुछ हमारी बीमारियां, वो भी हमारे लिए पोषण है। तो ये फिजिकल एनर्जी, तो इंसान तीनों चीजों से मिलके बना हुआ है और तीनों एनर्जियां एक दूसरे पे ओतप्रोत है, ओतप्रोत माना मिली हुई है। स्पिरिचुअल एनर्जी से हमारा मन बनता है, हमारे विचारों में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, हमारी भावनाओं में शांति, प्रेम, खुशी, आनंद। और फिर भोजन, जो हम भोजन कर रहे हैं वो भी हमारी शांति, प्यार, खुशी को बढ़ाने वाला हो। रासिक भोजन हमारी आलस्य को बढ़ाएगा, अलबेलेपन को बढ़ाएगा, जैसे पराठा, पकौड़ा, समोसा जो हम खाते हैं, गरिष्ठ चीजें खाते हैं। तामसिक भोजन उत्तेजना पैदा करने वाला, नॉन ये मांसाहारी भोजन, लहसुन प्याज हम खाते हैं, बहुत गर्म मसाले खाते हैं, है ना, ये भोजन चटार अचार खाते हैं जो उत्तेजना पैदा करते हैं। हम चाहेंगे परमात्मा से जुड़ना, जुड़ने नहीं देगा, तामसिक भोजन जुड़ने नहीं देगा। तो ये जो है तीनों एनर्जी की ओतप्रोत, इसलिए कहते हैं जिसमें तीनों एनर्जी का सामंजस्य है वो इंसान है। और जिसमें आत्मिक ऊर्जा नहीं और जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं है, उसको उसको क्या कहेंगे, इंसान कहेंगे क्या, क्या कहेंगे बताइए, आप तो योगी जन, बताइए उसे क्या कहते हैं। इंसान जिसमें तीनों एनर्जी का सामंजस्य है और जिसमें दो ऊर्जाएं नहीं, उसे क्या कहते हैं, बोली आइए, यहां बैठिए, आइए 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 सर, आइए, नमस्कार, उसे क्या कहते हैं, उसे हैवान कहते हैं, है ना, जिसका मन हमेशा बहुत तेज दौड़ रहा है, विकारों से पीड़ित है ना, उसे हैवान कहते हैं। और इसका खान पान भी गलत है, आसुरी है, गलत टाइम पे खाना, गलत टाइम पे सोना, वो इंसान क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ सकते हैं। तो इंसान, हैवान और तीसरा नाम मैं नहीं लेता हूं, आप खुद समझ सकते हैं। इनका खान पान भी खराब है, सोना भी गलत है, सोने के टाइम जागते हैं और जागते टाइम जागने के टाइम सोते हैं, तो ऐसे इंसान क्या है, आज का इंसान क्या बन गया है ना। तो ये इंसान की परिभाषा है। और स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य एक डायनेमिक प्रोसेस है, स्वास्थ्य कोई स्थिति नहीं है, सदा बदलने वाली एक प्रक्रिया है, इसकी हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, तीनों ऊर्जाओं के सामंजस्य को हम स्वास्थ्य कहते हैं, जिसमें हमारे जीवन में शांत, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद भी हो, जिसमें हमारी विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति भी सकारात्मक हो, और जिसमें हमारा भोजन भी सात्विक हो, और हमारा सैर भी, हमारा व्यायाम भी सात्विक हो, हमारी नींद भी सात्विक हो, राइट, और हमारा और क्या सात्विक हो। अगर हमें दवाई भी लेनी पड़े तो दवाई भी हम रोके ना खाएं, अपने कर्मों का हिसाब किताब समझ के उसको बहुत प्यार से सेवन करें, राइट। तो ये हमारी, और एक बहुत सुंदर बात, सिर्फ आत्मा और थोड़ी सी मेमोरी सेल्स, अंदर कुछ स्मृति की सेल्स हैं, 0.02% सिर्फ ये सेल्स नहीं बदलती, एक आत्मा नहीं बदलती इंसान में, और सिर्फ 0.2% सेल्स नहीं बदलती, क्योंकि मेमोरी उनके अंदर रहती है, बाकी 99.8% सेल्स, 99.8% सेल्स बदलती रहती है। कितने दिन में, 3 महीने से 2 साल में बदलती रहती, किस आधार पे, हमारी टीम के आधार पे। अगर हम अपने विचार बदल दें, अपनी भावनाओं को बदल दें, अपनी वृत्ति को बदल दें, अपनी स्मृति को चेंज कर दें, परिवर्तन कर दें, तो हमारी बीमारी, कोई बीमारी भी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो गया हो आपको, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आपको डायबिटीज हो गई, बहुत खराब हो गई हो, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। लीवर खराब हो गया, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। अगर दृढ़ता के साथ दृढ़ निश्चय के साथ अगर उस परमात्म स्थिति, जैसे कहते हैं वो स्थिति अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाए और अपनी टीम को पॉजिटिव बना लें, तो और तो उसके साथ उसके अनुसार ही हमारा भोजन, पथ्य और अपथ्य कहते हैं ना, है ना, हमारी हमारा व्यायाम, हमारी प्रॉपर नींद, समय पर अपनी घड़ी के अनुसार, अंदर की घड़ी के अनुसार चलें, तो आप कोई भी, मैंने पिछले 25 साल में यही देखा है, हमारे पास जो हार्ट के पेशेंट्स आते हैं जिनकी आर्टरीज ब्लॉक होते हैं, 10-10, 15-15 ब्लॉक होते हैं, डॉक्टर्स ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं, ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, 2-2 बाईपास करा के भी फेल हो जाते हैं, एंजियोप्लास्टी 10-10 बार एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं फिर भी वो चल नहीं पाते, 50 कदम चल नहीं पाते, ऐसे से उनको बीमारियां हो जाती हैं। और वो जब हमारे पास आते हैं 7 दिन के उस प्रोग्राम में, तो आते तो कैसे ठीक हो जाते हैं, 100-100 यूनिट इंसुलिन ले रहे होते हैं, एक हफ्ते में इंसुलिन बंद हो जाती है उनकी, हम जादू नहीं होता है, पर कैसे एक सामंजस्य स्थापन होता तीनों एनर्जी का, कैसे आत्मिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा तीनों के सामंजस्य से, तीनों की हार्मनी के द्वारा उनके अंदर स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण हो जाता है। और हम उन सेल्स को 3 महीने से 1 साल में जो ब्लॉकेज 90%, 80%, 100% भी हो जाते हैं, कैल्सीफाइड, वो भी खुल जाते हैं उनके। और विज्ञान ने इस बात को माना है ना, ये इन्होंने रिसर्च पब्लिश की 2011 में, जो वर्ल्ड की टॉप 20 स्टडीज में नंबर 1 रही 2.5 साल लगभग, ये भारत की अकेली रिसर्च है जो 2.5 साल नंबर 1 पे रही सारे विश्व में, ये सबसे ज्यादा लोगों ने इसको पढ़ा, साइट कोट किया है ना। तो ये जो है ये एक बात इंपॉर्टेंट बात है। और एक यहां एक बात, ये जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, हमारे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, और 80,000 अरब कोशिकाओं में हर कोशिका में 1 सेकेंड में 1 लाख रिएक्शन हो रही है। किंतु जब जब आप जल्दीबाजी करते हैं, टाइम की जल्दी करते हैं, प्रेशर, काम का प्रेशर महसूस करते हैं, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए ये ऐसा महसूस, अंदर से महसूस प्रेशर महसूस करते हैं, कंपटीशन कंपैरिजन का प्रेशर महसूस करते हैं, तो आपकी सेल्स की रिएक्शन 1 सेकेंड में 1 लाख की बजाय 1,20,000 लगभग हो जाती है। चिंता करते हैं कैसे होगा, तो 1,40,000 रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि जब यहां यही होता है ना, जल्दी चिंता तो यहीं शुरू होती है, जो भी हाइपोथैलेमस में शुरू होता है, यहीं पे एक ऐसा केमिकल बनता है जो 1 सेकंड से भी कम समय सारे शरीर में खून के द्वारा हर कोशिका पे पहुंच जाता है। और उन सेल्स में जो रिएक्शन 1 लाख हो रही होती है 1 सेकंड में, जिनके टॉक्सिन हम 1 सेकंड से कम समय में निकाल भी देते हैं, जहरीले पदार्थ, कैपेसिटी है कोशिका में, किंतु वो जो एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गए ना 20,000, 40,000, जब चिड़चिड़ करते ना, अंदर अंदर गुस्सा आता है, आता है ना, माथा गर्म हो जाता है, तो रिएक्शन 1,60,000 हो जाती है, जोर से गुस्सा करते हैं 1,80,000 हो जाती है, और गुस्सा करके फिर अंदर से होपलेस हो जाते हैं तो 2 लाख रिएक्शन हो जाते हैं। इसलिए ये इसी तरह से रोगों का जन्म होता है, क्योंकि सेल्स में इतना जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, इतने विषैले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, वो सेल मर जाती है, या उस सेल में इतने टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं, कैंसर की सेल बन जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है उसके अंदर, जिसकी वजह से बीमारी। और हम हमारे हर एक के शरीर में जन्म से, एक अंग जन्म से कमजोर रहता है। जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, पहले पहले जो पंडित होते हैं ना, जो नक्षत्रों को देखे वो बनाते थे, क्या बोलते हैं, जन्म पत्री लिखा रहता था, ये बच्चा उदर रोग से पीड़ित रहेगा, पेट के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा फेफड़ों के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा आंखों के रोग से पीड़ित रहेगा, क्योंकि वो अंग जन्म से ही मां के गर्भ से ही गलत बना, और सारी टेंशन का असर, सारे गलत व्यवहार का असर कहां पड़ता है, उसी अंग पर पड़ता है। जैसे एक 7 महीने का बच्चा पैदा हो जाए, 5 बच्चे हैं, एक 7 महीने का पैदा हुआ हो गया, तो वो अंडरवेट पैदा हुआ, वजन उसका 1 किलो भी था पैदा होने पर, बाकी बताओ 2.5-3 किलो के बच्चे पैदा हुए, तो जब भी बीमारी कोई आएगी सबसे पहले किसको होगी, उसी छोटे बच्चे को होगी जो अंडरवेट पैदा हुआ, सारा जन्म ऐसा रहेगा, बड़ा होके भी ऐसा रहेगा। सेम वे हमारी बॉडी में, किसी को ठंडी पड़ती है तो दमा हो गया, सांस तक उखड़ जाता है, गुस्सा आ जाए तो सांस उखड़ जाता है, कुछ गलत खा ले तो सांस उखड़ जाता है, हर चीज में सांस उखड़ता है, नहीं उखड़ता, ऐसे हार्ट वाले को ऐसे ही होता है, कुछ गलत खा ले तो हार्ट की तकलीफ हो गई, कुछ चिंता हो गई तो हार्ट की तकलीफ, गुस्सा आ गया तो हार्ट की तकलीफ, नींद नहीं आई तो हार्ट की तकलीफ हो गई, नहीं तो वही चीज बार बार होती रहती है, राइट। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसकी बजाय अब हम क्या करें, अब ऐसे रोगों कहते हैं इनक्यूरेबल डिजीजेस, कैंसर है इनक्यूरेबल है, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई इनक्यूरेबल है, बाईपास करा लो एंजियोप्लास्टी करा लो कोई इलाज है क्या, परमानेंट तो नहीं है फिर बंद हो जाएंगे। अब इनका मतलब इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल का मतलब क्या है, इनक्यूरेबल का मतलब क्या है बताइए, इनक्यूरेबल इनक्यूरेबल का मतलब क्या है, उसका मतलब इन प्लस क्यूरेबल, उसका मतलब इनक्यूरेबल में नॉट क्यूरेबल, इसका मतलब ये बीमारी का इलाज नहीं है, असाध्य रोग है, क्योंकि तो इसमें इसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्या है वो मीनिंग, इन प्लस क्यूरेबल, कि क्यूरेबल है, कब कब क्यूरेबल है, अगर हम इन जाएं अंदर जाएं तो उस आत्मिक शक्ति को पहचान लें कि मैं कौन हूं, और उस परम शक्ति से जुड़ जाएं, परम सत्य से जुड़ जाएं, और लगातार उससे जुड़े रहें, पावर हाउस से अपनी बैटरी चार्ज करते रहें, और उसके अनुसार अपना जीवन शैली को बदल लें, जीवन जीने का ढंग बदल लें, तो आपका कोई भी अंग आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो है, और वो उससे क्या होगा, मेडिटेशन के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं आप, क्यों करते हैं आप योग और मेडिटेशन बताइए, क्यों करते हैं हम सभी योग मेडिटेशन, शांति प्राप्त करने के लिए। शांति माना क्या होता है, कौन बताएगा शांति का क्या अर्थ है, हां जी सोलेश, तो अंग्रेजी का शब्द हो गया, शांति क्या है, शांति क्या है, हमारे 90% से अधिक विचार पास्ट में जो हमारे साथ बीत गया, भूतकाल में जो हमारे अंदर जो कुछ हमारे साथ गलत हुआ है बचपन से लेकर के, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, हमारे चित्त में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, हमारे मन को या हमारे भावनाओं को चोट पहुंची है वो अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, बचपन में 4 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, और वो उसके कारण उसी रंग में फिर हम रंग करके जीवन को चलाते हैं। तो 90% से ज्यादा विचार, बल्कि आजकल तो हम कहते हैं पहले 90% कहते थे, फिर बाद में 95% कहने लगे, और अभी लेटेस्ट जो फिगर्स हैं वो 97% है। 97% हमारे विचार कहां से आ रहे हैं, जो पास्ट में हमारे साथ घट गया है, उसी रंग में हम डूब करके अपने आप को देख रहे हैं, उसी से विचार आ रहे हैं, वर्तमान को भी उसी रंग से देख रहे हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है इसी रंग से देख रहे हैं। तो 97% विचार वहां से आ रहे हैं, सिर्फ 3% विचार वर्तमान से आ रहे हैं। तो इसके कारण मन की स्पीड बहुत फास्ट हो गई, बहुत तेज विचार चल रहे हैं, उसको अशांति कहते हैं। और शांति किसे कहते हैं, अगर आप समझ जाएं एबीसीडी, हम समझ जाएं ये सत्य की समझ, या सत्य की समझ एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, कर्म सत्य है, हमने जो कर्म कर दिया वो कभी विनाश नहीं हो सकता, उसको ब्याज के साथ में चुकता करना ही पड़ेगा। अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, क्यों बीमारियां आती हैं, तकलीफें क्यों आती हैं, आप समझे, मान लीजिए कोई दोस्त था मेरा पिछले जन्म में, मैंने उसे 10 रुपए उधार लिया, और 100 साल के बाद वो क्या करे, मैंने उसका वापस नहीं कर पाया, इस जन्म में क्या होगा, वो दोस्त मेरा क्या बन के आएगा, या तो बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, या तो मेरा बेटा बन के आएगा, या तो मेरा कोई ना कोई ऐसा सिस्टम में आएगा कि मुझे उसको 10 रुपए तो वापस करना पड़ेगा, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा, 10 रुपए तो हिसाब है, ब्याज किताब है ना, तो ये किताब कितनी है पता है आपको, 100 साल का ब्याज कितना होता है 10 रुपए का, कौन बताएगा कितना होता है, 2 करोड़ नहीं, मैंने हिसाब लगाया था उसका, 4,18,35,040 रुपए बनता है 100 साल का ब्याज है जी, इतना ब्याज बनता है। अगर किसी की आपने किसी के 200 साल पहले दो बार इंसल्ट की, अपमान किया, इस जन्म में कितने बार अपमान होगा आपका, ब्याज लगा लो आप, है ना। तो ये है कर्मों का हिसाब किताब, क्यों कोई हमारे पीछे लगा ही रहता है तंग करने में, तो ये हमें देखने की आवश्यकता है। तो रिएक्शन क्या कहती है, मेडिटेशन करने से क्या, हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा देते हैं, माफ कर देते हैं खुद को भी दूसरों को भी, फुल स्टॉप लगा के अपने अपने सत्य स्वरूप में टिक करके उस परम सत्य से कंबाइंड हो जाके कर्म करते हैं, परम सत्य से कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म की स्पीड स्लो, हम स्लो हो जाते हैं, जरूरी विचार ही आते हैं, 90-95% विचार कट जाते हैं, इसको शांति कहते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, पास्ट में रहके नहीं, भविष्य में रहकर कर्म नहीं करते, वर्तमान से जुड़कर के कर्म करते, अपने सत्य से जुड़कर कर्म करते। और प्यार माना जो भी हमारे संबंध संपर्क में लोग आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, चाहे मेरे घर में हो चाहे बाहर कार्य क्षेत्र में हो, उनको उनके किसी उस सब पार्ट के साथ, किसी भी पार्ट के साथ दिल से सम्मान से बिना किसी शर्त के स्वीकार करना, उनकी बराबर पालना करना, गाली देने वाले की भी और महिमा करने वाले दोनों की बराबर पालना करना। भगवान दोनों की बराबर पालना करता है, नहीं करता है, चोर डाकू की भी करता है उतनी, और समझदार आदमी की भी उतनी पालना करता है, उसको बराबर हवा पानी, यानी कि तुम तो गलत आदमी हो तुम्हारा हवा पानी कम इसका ज्यादा, ऐसा होता है क्या? अकल भी दोनों को बराबर मिलती है, नहीं मिलती है। तो ऐसा प्यार, जब ऐसा प्यार आप प्राप्त कर लेते हैं, और खुशी माना संतुष्टता, जो मिला जितना मिला उसमें संतुष्ट रहना, ये खुशी की इच्छा। तो जब शांति आप अचीव करते हैं तो आपके क्या होता है, आपके इरेक्शन की संख्या 1,00,000 के बजाय 80,000 हो जाती है। जब प्रेम, उस सत्य प्रेम को आप अचीव कर लेते, उस स्थिति को अपने सबके प्रति, तो आपके इरेक्शन की संख्या 60,000 हो जाती है। और जब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहते हैं हमेशा तो 40,000 हो जाती है। और आनंद जब बंधन मुक्त स्थिति, लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं तो आपकी रिएक्शन की संख्या 20,000 हो जाती है। इसलिए कहते हैं पीस हील्स, लव हील्स, हैप्पीनेस हील्स, ब्लिस हील्स। इसे कहते हैं शांति से क्या होता है, बीमारी ठीक होती है, सत्य प्यार से बीमारियां ठीक होती हैं, है ना, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से बीमारियां। इसलिए इस तरह से मेडिटेशन आपको ठीक करता है, क्योंकि क्या करता है, जो टॉक्सिन जमा होगा ना सेल्स के अंदर उनको साफ कर देता है। सफाई होती नहीं हुई, होगी नहीं हुई सफाई, सफाई होगी नहीं होगी, सफाई होती। अब देखिए, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि स्ट्रेस से पैदा होती है। स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रेशर डिवाइड बाय कोपिंग एबिलिटी। जब प्रेशर एक से अधिक होता है तो उसको हम तनाव कहते हैं। अब प्रेशर जो अंदर के प्रेशर, बाहर के, अंदर का प्रेशर क्या होता है, मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज की बीमारी है, घुटने खराब है, कमर खराब है, ये मेरा अंदर का प्रेशर है। मैं बहुत सेंसिटिव हूं, नाजुक स्वभाव है मेरा, किसी ने कुछ कहा तो मेरे को विचार बहुत चलते हैं, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे को जल्दी चिंता बहुत जल्दी हो जाती, ये मेरा अंदर का, बचपन से सीख लिया, माता पिता को देखा, समाज में सीखा, आ गया अंदर, ठीक है, अपने मन की बात कह नहीं पाता हूं, ये मेरा अंदर का प्रेशर है। इसको बदलना सहज तो नहीं है, टाइम लगेगा, बदल तो सकता है, टाइम लगेगा। ऐसे जो बाहर का प्रेशर क्या है, मेरी परिवार में बनती नहीं किसी से, वाइफ से नहीं बनती है, बच्चों से नहीं बनती है, जहां नौकरी करता हूं वहां पे मेरी उससे, उसके बॉस से नहीं बनती, साथी उससे नहीं बनती है, ये बाहर का प्रेशर है। फाइनेंशियल प्रेशर, खर्चे ज्यादा है, पैसा, कमाई कम है, गर्मी बहुत है बाहर, ये भी प्रेशर है, पॉल्यूशन बहुत है, ये भी प्रेशर है, ट्रैफिक बहुत है, ये भी प्रेशर है, 2,000 रुपए का नोट बदल दिया, बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, ये भी प्रेशर है, नहीं है ना प्रेशर। तो ये सब प्रेशर है ना, ये बाहर के प्रेशर, बदल सकता हूं क्या मैं इसको, नहीं बदल सकता हूं, मेरे हाथ में तो नहीं है, क्योंकि एक चीज मेरे हाथ में है, कोपिंग एबिलिटी, ये आत्मिक शक्ति है। अगर मैं आत्मिक शक्ति बढ़ा दूं तो कभी मेरे को प्रेशर होगा ही नहीं, मैं कभी टेंशन में आऊंगा ही नहीं। आप देखेंगे यहां शांति वन में, देखें यहां, देखें जो यहां रहने वाले हैं, वो टेंशन में देखे आपने, खाना खिलाने में टेंशन में देखे क्या, ये ज्ञान सरोवर नहीं है, बेगमपुर है ये, क्या है बेगमपुर, देखा आपने बेगम, जहां कोई गम ना हो। और आप कौन है सभी, आप बेगमपुर के बादशाह हैं, कौन है आप सभी, बेगमपुर के बादशाह है ना आप, तो सभी तो आप ये राजाओं की तरह रह रहे हैं, है ना, और ये बेगमपुर है, यहां कोई चिंता फिक्र है क्या, कोई भी देखो, बहनों को देख लो, भाई को देख लो, जो सेवा कर रहे हैं सब यहां है। तो यहां तो पानी भी हमको टैंकर्स में लेके आना पड़ता है, हमें पानी भी अवेलेबल नहीं है, माउंट आबू में नीचे भी पानी नहीं है, यहां तो हर चीज हमको डबल रेट में लेनी पड़ती है ना। तो यहां की लाइफ इजी है क्या, प्रेशर तो हमें बहुत है, सबके पास शरीर भी है अपने अपने, है ना, अलग 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 घरों से आए हुए हैं बच्चे जो यहां काम कर रहे हैं, ऊपर से तो उतरे नहीं, टपके तो नहीं बरसात के साथ, है ना, वो भी इंसानों के बच्चे हैं, पर उन्होंने अपने जीवन को बदला है। आत्मिक शक्ति बढ़ाई है ना, तो उससे क्या हो गया, अब वो बेगमपुर के बादशाह बन गए। और यहाँ जो उनका वायुमंडल इतना बना दिया, अच्छा बन गया, यहाँ आने वाले भी अपने आप को बेगमपुर का बादशाह समझते हैं। तो नो मेडिकेशन और सर्जरी इन दिस यूनिवर्स कैन इंप्रूव कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ। कोई भी शक्ति दुनिया की, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी दवाई आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा सकती है। क्या बढ़ा सकता है? ओनली टेक्निक टू इंक्रीज कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ इज योग और मेडिटेशन। क्या है वो? योग मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन। आप तो सभी ज्ञाता हैं योग और मेडिटेशन की। तो एज ए डॉक्टर, क्योंकि हम लोगों को, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, वो सभी कभी हाई उसके होते हैं मोस्टली, है ना, लॉजिकल लोग होते हैं, हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं। तो उनको मतलब हम जब टीच करते हैं ना, समझाते हैं, और हमने जो साइंस के द्वारा रिसर्च की है, तो योग माना कनेक्शन, जोड़, है ना, किससे जोड़, सत्य से जोड़, कनेक्शन विद द ट्रूथ। और सत्य की परिभाषा क्या है? दो क्वालिटी है सत्य की। एक तो ट्रूथ एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, सत्य सदा होता है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। देह क्या है हमारी? पांचवें महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, मां को पता लगता है बच्चा अंदर घूम रहा है, और जैसे आत्मा निकल गई तो क्या कहते हैं? देहांत, मट्टी को ठिकाने लगाओ, रात को भी रखते नहीं। तो आत्मा देह तो क्या है? जन्म और मरण होता है। देह तो बदल रही रोज, 2 किलो से 2.5 किलो से बदल के 70 किलो के 80 किलो के हो जाते हैं, रोज बदल रही है। नाम तो रोज बदल रहे हैं, बदल सकते हैं। रोल तो रोज बदलते हैं, एक दिन में 10 बार बदलते हैं। डॉक्टर भी हैं, पिता भी हैं, पति भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे काम हैं हमारे, हर आत्मा के बहुत सारे काम हैं। किसी के दोस्त भी हैं, किसी के बच्चे भी हैं, किसी के भाई भी हैं, कितने सारे रोल हैं। ये भी बदल रहे हैं, ये भी मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो ये जो है ये, और ट्रूथ इज अनचेंजेबल, इट इज ऑलवेज, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन बीइंग? इंसान का ट्रूथ क्या है? इंसान का ट्रूथ ये है, ह्यूमन बीइंग शब्द कहां से आया? ह्यूमन, ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया, एक लैटिन वर्ड है, वो उसका मतलब सॉयल, ह्यूमस माना सॉयल, मिट्टी, ये हमारा आउटर सेल्फ है। और लाइफ बीइंग माना लाइफ फोर्स, माना सोल, SOUL, ये हमारा अंदर वाला मैं है। स्पेलिंग में क्या फर्क है? आई और यू, तो आई, आई से आईनेस और माइनस आती है, मैंपन और मेरापन आता है, और यू से यूनिवर्सल माना बीनेस आती है, वसुदेव कुटुंबकम। हम सब आत्मा एक, परमात्मा पिता के बच्चे, आपस में भाई भाई है। तो अंदर का जो मैं है ना, ये बीइंग है ना ये, तो जब हम आउटर सेल्फ और बॉडी रोल मटेरियल कॉन्शियस होते हैं, इनसे अनस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल माना हमेशा हिलते रहते हैं, बॉडी भी हिलती रहती है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, रोल भी हिलते रहते हैं, मटेरियल भी हिलता है, पैसा पैसा प्रॉपर्टी भी हिलती रहती है, नहीं धन माल भी हिलता रहता है, कनेक्शन भी हिलते रहते हैं, तो इससे हम इनसिक्योर महसूस करते हैं। और पांचों विकारों का जन्म, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जन्म इसकी वजह से होता है। जब हम द्वापर युग में, अभी आप कल जानेंगे ड्रामा का, परसों ड्रामा के बारे में जानेंगे, कि जब हम द्वापर युग में आते हैं, सत्युग त्रेता में हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्म मन ही रहते हैं। जब हम द्वापर युग में आते हैं, जब बॉडी कॉन्शियस होने लगते हैं, रोल कॉन्शियस होने लगते हैं, तो हमारे अंदर काम विकार का जन्म होता है, उससे फिर लोभ क्रोध का जन्म होता है, फिर लोभ का, फिर मोह का, और फिर अहंकार का जन्म होता है। और इनसे ही हमारे अंदर ये जो आलस्य अलबेलापन जन्म लेता है, दूसरों में दूसरों के अवगुण दिखाई देने लगते हैं, बदलने की भावना पैदा होती है, ग्रीड से शक और अनुमान पैदा होता है, मोह से चिंता और भय पैदा होता है, और ईगो से अहंकार से जल्दीबाजी, प्रेशर और ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। इसी को तनाव कहते हैं। और 100 से ज्यादा स्टडी हुई है, ज्यादा हुई है स्टडी, टाइम हो गया, अच्छा बस अभी पूरा करते हैं। 100 से ज्यादा स्टडी हुई है, और उसमें पाया गया मूड डिसाइड्स अवर फूड। हम गलत खाना क्यों खाते हैं? हमें डायबिटीज, डॉक्टर ने मना किया आप नहीं खाओ, फिर भी क्यों गलत खाते हैं? जब हम अंदर कड़वाहट महसूस करते हैं तो मीठा खाते हैं, मन में कड़वाहट, मुंह से मीठा खाते हैं, जबरदस्ती भी खाएंगे, रात को चोरी करके भी खाएंगे, मना करे तो भी खाएंगे। अंदर से ड्राई महसूस करते हैं, यहां से फ्राइड खाते हैं, तला हुआ खाते हैं। अंदर से बोरिंग महसूस करते हैं, यहां से हॉट और स्पाइसी खाते हैं। तो मूड हमारा, जब मूड खराब होता है तो हम गलत खाना खाते हैं, और ऐसे मूड गलत वाले को नींद भी नहीं आती है ढंग से, और ऐसे गलत मूड वाले को, वो देर से उठता है, देर से सोता है, तो उसको एक्सरसाइज भी नहीं करता है, सैर भी नहीं कर सकता है, व्यायाम भी नहीं कर सकता, और ऐसा आदमी टेंशन रहता है इसलिए स्मोकिंग करता है, शराब पीता है, बहुत चाय कॉफी पीता है, दवाइयां खाता है, तो ऐसा आदमी बीमार होता है। इसकी बजाय अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा, स्टेबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी, और आत्मा के सात गुण है ये। ये आदमी खाने में खुशी ढूंढ रहा है, ये खाने क्यों खा रहा है, ये क्या कर रहा है, जीने के लिए नहीं खाने के लिए जी रहा है ये। आज ये पकौड़े मिलेंगे, आज तो समोसे मिलने वाले हैं, कल गुलाब जामुन मिलेगा, है ना, शाम को ये कर दिन सुबह से रात को पार्टी है तो सुबह सुबह और दोपहर खाना भी मिस कर देते हैं, रात को ही खाएंगे इकट्ठा ही, है ना, नहीं होता है। तो ये आदमी खाने के लिए जी रहा है, और ये आदमी इसके अंदर शांति, आत्मा के सात गुण है ना, ये सातों गुण आत्मा के ये अंदर है, ये सदा खुश है, इसके अंदर ये वैल्यूज सातों गुणों से मिलकर हमारे अंदर वैल्यूज बनती है, सतों, है ना, हमारे दैवी गुण बनते हैं, इससे हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और ऐसा आदमी क्योंकि सदा पहले से खुश है तो ये जीने के लिए खा रहा है, ये जीने के लिए खाता है, ये खाने के लिए जीता है, राइट, क्योंकि उसका मूड तो इसका ठीक है, ये सेब खाएगा, ये गुलाब जामुन खाएगा, ये समोसा खाएगा, वो क्या खाएगा, वो खीरा खीरा का टमाटर खाएगा, राइट, क्योंकि खाने का सबसे, भोजन का सबसे पहला गुण कौन सा है, पोषण नहीं है, सबसे पहला पोषण है सफाई, क्लीनिंग, उसके बाद पोषण है, पहले सफाई तो करो फिर उसके बाद ताकत देगा ना भोजन। और इसके साथ प्रॉपर नींद आती है और प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, और ऐसे आदमी को स्मोकिंग शराब मुस्कुराता रहता है, उसको कोई शराब पीने की कह भी नहीं सकता, ऐसा आदमी हेल्दी रहता है। तो मैं समझता हूँ, यहाँ ही मैं पूरी करता हूँ, और ये जो है ये, और एक ही आदमी जो आपको हील कर सकता है वो कौन है, सिर्फ आप हो। डॉक्टर गाइड कर सकता है, रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, और भगवान आपकी हजार गुना मदद कर सकता है। और स्वस्थ माना स्व माने आत्मा, अस्थ माना स्थित, तो आत्मिक स्थिति में स्थित को ही स्वस्थ कहते हैं। और ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अंदर वाली घड़ी के अनुसार काम करो, आत्मा परमात्मा, परमात्मा के बारे जानना, आत्मा मन और शरीर तीनों की एनर्जी को हार्मोनाइज कर दो, इसी को राजयोग कहते हैं। और हमने इसके द्वारा क्या किया है, हमने इसके द्वारा ये रिसर्च की जो ना, हमने ना ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जो बताया 2 साल 2.5 साल आगे नंबर 1 रहा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इसको एक्सेप्ट किया। और ये देखो हमारे जो ब्लॉक्स थे ना हमारे पेशेंट्स के, 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुले, ये देखो 90% ब्लॉक खुल गया है, देख रहे हैं, बिना ही किसी ऑपरेशन के, ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक खुल गया है ना, ये देखिए 100% ब्लॉक भी खुले, 50 में से 29 ब्लॉक खुल गए, ये देखिए 100% ब्लॉक खुल गया, ये देखिए ये सारे ब्लॉक खुल गए हैं ना, ये देखिए 80 और 90% का ब्लॉक खुला। इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया, दो बार हार्ट अटैक आया, हार्ट की पंपिंग पावर 60% होती है, 30% रह गई, रिपीट किया तो 45%, मतलब हार्ट भी रीजनरेशन हो जाता है, नया बन जाता है, इसको 80% ब्लॉक खुल गया, या हार्ट की पंपिंग 20% रह गई, रिपीट किया तो 50% हो गई, मतलब हार्ट की मसल्स जो डेड हो गई उसको भी नया बना सकते हैं। ये देखिए 100% ब्लॉक खुल गया, कंट्रोल ग्रुप में ब्लॉक बढ़ गए, हर ब्लॉक के हम एंजियोग्राफी देख के बता देते हैं पेशेंट को कि इसके स्वभाव कैसा है, उसकी एंजियोग्राफी से पता लगता है ये आदमी का सोच कैसी है, संबंध कैसे हैं, कैसे रहता है ये आदमी, एंजियोग्राफी देख के उसका पूरा हाथ की रेखा देख के बताते हैं लोग जो क्या होते हैं पामिस्ट, ऐसे हम लोगों को एंजियोग्राफी देख के उसकी समझ में आती है कि इसका स्वभाव कैसा होगा जीवन, क्योंकि हर ब्लॉक के पीछे हमारे थॉट है, विचार है, सोचने का ढंग है, अगर विचार नहीं बदलेंगे तो हमारे ब्लॉक निकल नहीं सकते, भोजन से निकलेंगे नहीं, सैर से, कोई दवाई से नहीं निकल सकते, विचार बदलने से, विचार राजयोग मेडिटेशन से बदल सकते हैं। तो देखिए ये ब्लॉक देखो बढ़ गया, एक मैं और दिखा देता हूं एंजियोग्राम, देखिए 100% ब्लॉक है ये, यहाँ कट ऑफ है बिल्कुल, ये आर्टरी कट ऑफ है, और देखिए जब दोबारा किया तो देखिए पूरी आर्टरी खुल गई। तो ये है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो इसलिए हमने राजयोग के द्वारा हम मन को भी और तन को भी, ये हमने सारी रिसर्च की, हार्मोन्स की, ईईजी की, हार्ट रेट वेरिएबल, सारी बकायदा रिसर्च की गई सारी, है ना। और ये हम अब तक 10,400 कितने पेशेंट्स, 57 पेशेंट अभी तक जिनके एंजियोग्राफी के लिए प्रूवन केसेस, उनको हमने लिया है, उनके ब्लॉक खुले हैं, है ना। और पिछले 25 साल से प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें आप घर में जब आप ये समझ लें कि पहली बात है स्पिरिचुअल केयर, जो भी काम करें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में करें, बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस होकर ना करें, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 आधा घंटा लगभग मेडिटेशन करें, और हमेशा और आनंद की स्थिति का अनुभव करें, और बाहर जब भी कहें तो अपने पवित्र, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख, ये आपका हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, और इसके लिए 8 बजे तक चुप रहें, जो मैंने शुरू शुरू में बताया, इस 8 बजे तक अपनी टीम को पॉजिटिव रखें ताकि, और हम मुरली परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनते हैं जो 100% पॉजिटिव टीम है, उससे कॉर्टिसोल हार्मोन ठीक बैलेंस में निकलता है जिससे सारा दिन शांति प्यार खुशी में बीतता है। और फिजिकल केयर, भोजन हमारा शुद्ध सात्विक भोजन हो और समय पर खाएं, खाने का समय ब्रेकफास्ट 8 से 9, लंच 1 से 2, डिनर शाम को 6 से 7 के बीच में कर लें, अंधेरा होने से पहले ही कर लें, और भोजन प्रॉपरली चबा के खाएं, परमात्मा की याद में खाएं। सुबह सूर्य उदय के बाद आधा घंटा सैर कर लें, नहा धो के आधा घंटा पौना घंटा लगभग सैर करें, और शाम को सनसेट के पहले सैर कर लें, 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, प्रॉपर यूज मेडिसिन और दवाई, एंजियोप्लास्टी बाईपास कराना वो भी करा लो, पर याद रखो कि परमंड इलाज नहीं है, ठीक है। और ओम शांति।